आज है 14 जून दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में गोलीबारी। रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सांसद स्टीव स्केलीज हमले में घायल हुए, हालत स्थिर। लंदन में 27 मंजिला रिहायशी इमारत जलकर खाक हुई, 6 लोगों की मौत। पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय आगे आए।
हम लोगों को पानी दे रहे हैं और जूस वगैरह, कपड़ा, जो भी लोगों को चाहिए वो हम सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरह की।
और दुनिया जहान में होगी पड़ताल चीन ताइवान के पेचीदा रिश्तों की।
मेनलैंड चाइना का बीजिंग का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर बहुत जल्द ही ताइवान खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, जब उसका मर्जर हो जाएगा मेनलैंड चाइना में, ऐसा नहीं कह सकते।
लेकिन ये सब होगा थोड़ी देर में। पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। अमेरिका से मिल रही खबरों के मुताबिक वर्जीनिया में बेसबॉल अभ्यास मैच के दौरान एक रिपब्लिकन नेता और उनके सहयोगियों पर गोलियां चलाई गई हैं। वॉशिंगटन डीसी पुलिस गोलीबारी की जांच कर रही है और इस सिलसिले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। स्थानीय मीडिया का कहना है कि घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। घटनास्थल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी, मुझे लगा कोई पटाखा फूटा है, लेकिन इसके बाद मैंने और आवाज़ें सुनी, लोगों को भागते देखा। मैं फौरन ज़मीन पर लेट गया। जो व्यक्ति गोली चला रहा था, मुझे उसकी और पुलिस की दोनों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये सब ऐसा नहीं था जिसकी उम्मीद आप सुबह सुबह करें। ये थे वॉशिंगटन में एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लंदन की एक रिहायशी इमारत में बीती रात लगी भीषण आग में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। पुलिस ने मृतकों की संख्या अभी तक 6 बताई है, लेकिन ये आंकड़ा इससे कहीं अधिक होने की बात कही जा रही है। 70 से अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। युद्ध अपराधों की जांच करने वाले संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं का कहना है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का पर अमेरिका के नेतृत्व में हो रहे हवाई हमलों में आई तेजी की वजह से बड़ी संख्या में आम लोग मारे जा रहे हैं। मानवाधिकार समूह ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस बात पर भी चिंता जताई कि रक्का और मोसुल में इस्लामिक स्टेट से लड़ रही जमीनी सेना सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल कर रही है।
We note in particular that the intensification of air strikes,
हमने इस बात को नोट किया है कि हवाई हमलों से सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, लेकिन इसकी वजह से आम लोग भी मारे जा रहे हैं। 1.5 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इस्लामिक स्टेट को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन आम लोगों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह थे ह्यूमन राइट्स वॉच के एक आला अधिकारी के शब्द। रूस में संसद के निचले सदन ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमें सोवियत संघ के ज़माने में मॉस्को में बने हज़ारों रिहायशी भवनों को गिराने की बात कही गई है। स्थानीय लोगों ने सरकार की इस योजना का प्रबल विरोध किया है क्योंकि इससे लगभग 10 लाख लोगों के विस्थापित होने का खतरा पैदा हो गया है। इसके विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तुर्की की एक अदालत ने मुख्य विपक्षी पार्टी के एक सांसद को जासूसी के आरोपों में 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एनिस बेबलरोग्लू पर आरोप है कि उन्होंने तुर्की के एक अखबार को वो वीडियो मुहैया कराया जिसमें दिखाया गया है कि तुर्की की खुफिया एजेंसी के अधिकारी हथियारों को ट्रक के जरिए सीरिया भेज रहे हैं। एनिस तुर्की की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के ऐसे पहले सांसद हैं जिन्हें जेल की सजा सुनाई गई है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि वे ऐसे नए कानून लाएंगे जिनसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे बयान देने वालों पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। श्रीलंका में हाल के महीनों में मस्जिदों और मुसलमानों की दुकानों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस का कहना है कि उसने इस सिलसिले में उग्र बौद्ध समूह से संबद्ध एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। भारतीय सेना ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और रिहायशी इलाकों में आज एक बार फिर गोलाबारी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर बीते 4 दिन में 9 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। ब्रिटेन से एक 27 मंजिला इमारत के आग में भस्म हो जाने की खबर सुबह से आ रही थी कि कुछ ही देर पहले अमरीका के वर्जीनिया प्रांत से गोलीबारी की खबर आ गई। रिपोर्ट है कि अमरीकी सांसदों के एक महत्वपूर्ण बेसबॉल मैच की प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर एक हमलावर ने गोलियां चला दी। इसमें रिपब्लिकन पार्टी के एक वरिष्ठ कांग्रेसमैन या सांसद स्टीव स्केलीज और उनके सहयोगी घायल हो गए हैं। आइए सीधे चलते हैं वाशिंगटन डीसी में मौजूद हमारे संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, अब से करीब मुझे लगता है कि एक डेढ़ घंटा पहले ये खबर आई होगी, क्या ताज़ा हालात है वहाँ?
जी हाँ बिल्कुल राजेश, देखें वाशिंगटन डीसी से लगे हुए अलेक्जेंड्रिया शहर में सुबह यहाँ के स्थानीय समय से तकरीबन 7 बजे की घटना है, जहाँ रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद कल डेमोक्रेट्स के साथ खेले जाने वाले एक चैरिटी बेसबॉल गेम की प्रैक्टिस कर रहे थे और एक प्रत्यक्षदर्शी सांसद के अनुसार अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई दी और फिर उन्होंने देखा कि ग्राउंड के एक कोने में जो डगआउट होता है यानी जो पवेलियन नुमा जगह, वहां से एक शख्स राइफल से गोली चला रहा था। उनके अनुसार प्रतिनिधि सभा के चीफ व्हिप स्टीव स्केलीज जो फील्डिंग कर रहे थे वो गोली लगने से जमीन पर गिर पड़े और घिसट घिसट कर मैदान के बाहरी हिस्से की ओर पहुंचे, जहां वो बिल्कुल शिथिल अवस्था में नजर आ रहे थे। उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलानी शुरू कर दी और जो प्रत्यक्षदर्शी सांसद है उनके अनुसार उन गार्ड्स को भी गोली लगी, लेकिन उनमें से एक ने हमलावर को घायल कर दिया और पुलिस के अनुसार हमलावर हिरासत में है। ये गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चली है, यह अंदाजा है, और पुलिस का कहना है कि 5 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है।
राष्ट्रपति
ट्रंप ने ट्वीट के जरिए
कहा
है कि स्केलीज बुरी तरह से घायल हुए हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं।
ना, लेकिन ये जो हमलावर के बारे में कोई और तफसील, कोई और जानकारी आपके पास है? क्योंकि अजीब सी बात है, प्रैक्टिस के लिए वहाँ प्रतिनिधि सभा के सदस्य इकट्ठा हुए हैं और गोली चला दी, कोई सुरक्षा वगैरह का इंतजाम कितना पुख्ता था?
देखिए आमतौर पर जब ये एक आम बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए वहां जमा थे, जो सीनियर मेंबर हैं स्टीव स्केलीज उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स थे और कोई उस तरह की वो उसको सुरक्षा के हिसाब से कोई बहुत ऐसी खतरनाक जगह उसको नहीं माना जाता है, लेकिन पुलिस ने हमलावर के बारे में सिर्फ इतना कहा है कि वो हिरासत में है। प्रत्यक्षदर्शी सांसदों के अनुसार उसे भी गोली लगी, वो गोरा है, उसके काले बाल है, अभी उसके मकसद के बारे में कुछ नहीं पता चला है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो किसी खास कांग्रेसमैन को निशाना बनाने आया था या उसे मालूम था कि यहाँ सिर्फ रिपब्लिकन्स प्रैक्टिस करने आएंगे वगैरह वगैरह। अब से तकरीबन आधे घंटे में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद है।
जी ब्रजेश उपाध्याय, जानकारी मिले। ब्रजेश उपाध्याय, आप नजर रखें, हम सुबह के कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे बात करेंगे। अमेरिका के बाद खबर ब्रिटेन से, जहां राजधानी लंदन की एक 27 मंजिला रिहायशी इमारत में कल रात भीषण आग लग गई और सुबह तक इसकी 24 मंजिलें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। अधिकारियों ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है लेकिन कहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। आग स्थानीय समय के मुताबिक रात के 1 बजे से थोड़ा पहले लगी। ग्रेनफेल टावर नाम की इमारत ग्रेनफेल रोड पर है। किसी तरह बच निकल कर आए लोगों ने आधी रात के उस खौफनाक मंजर को कुछ यूं बयां किया।
मैंने अपनी पत्नी से चिल्लाकर कहा आग आग। हमने कुछ तौलिए गीले किए, बच्चों के कमरे में गए, उन्हें तौलियों में लपेटा और बाहर निकलने को तैयार हुए। बाहर अंधेरा था और धुआं भरा हुआ था। लोग सीढ़ियों से नीचे भाग रहे थे, कुछ लोगों ने सामान भी उठा रखा था। चारों ओर भगदड़ मची थी।
ये थे महाद इगल, जो ग्रेनफेल टावर में रहते थे। उसी टावर में रहने वाले जोडी मार्टिन ने कहा कुछ लोग आग से बचने के लिए ऊपरी मंजिलों से कूद भी गए।
मैंने दूसरी मंजिल की खिड़की में एक परिवार के 3 लोगों को देखा। वो कंबल हिला रहे थे और ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहे थे और फिर एक एक करके वो खिड़की पर नजर आना बंद हो गए। मेरी पार्टनर ने किसी को ऊपर से गिरते हुए भी देखा। मैंने एक महिला को देखा जिसने अपने छोटे बच्चे को खिड़की से बाहर लटका रखा था और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। ये भयंकर आपदा है और मेरे अंदाज से सैकड़ों नहीं तो दसियों लोग जरूर मारे गए होंगे।
हमारे साथी विनीत खरे इन दिनों लंदन में हैं और कुछ ही देर पहले वो इस जली हुई इमारत के पास पहुंचे थे। मौके पर मौजूद कई भारतीय थे जो जरूरतमंदों की मदद के लिए दूसरे वॉलंटियर्स के साथ जी जान से जुटे थे।
अभी तक तो जो ताज़ा जानकारी है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 70 से ज़्यादा घायल हुए हैं। मेरे सामने वो बिल्डिंग है धू धू करके अभी भी जल नहीं रही है, उसमें से धुआं निकल रहा है अभी भी, उसको बुझाने की कोशिशें जारी हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भारतीय लोग हैं जो यहाँ पर पास में ही काम करते हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सतनाम सिंह है।
तो सतनाम जी, आप किस तरह की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, क्या काम करते हैं यहाँ पे?
हम लोगों को पानी दे रहे हैं और जूस वगैरह कपड़ा जो भी लोगों को चाहिए वो हम सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरह की।
जी आपका क्या नाम है?
सिमरन।
सिमरन, यहाँ पे किस तरह के लोगों की किस तरह की मदद की जरूरत है यहाँ पे?
हम लोगों को पानी सर्विंग कर रहे हैं, पानी वगैरह कपड़े वगैरह लोग इधर रख रहे हैं घरों से लगा कर, जो किसी के पास एक्स्ट्रा कपड़े जो भी है, तो जो लोग हैं जिनका घर जले हैं
जी जी जी,
तो उन्हें कपड़े वगैरह सब सर्व हो रहा है।
जी, बहुत शुक्रिया। हम अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे इलाके में थे जहाँ पर जो लोग इस बिल्डिंग में रहते थे, इस इमारत में रहते थे, वहाँ से उन्हें निकाला गया था। उस लोग सड़क पर थे, उसमें महिलाएं, बच्चे, और उनका पता नहीं था कि आज रात उनकी कैसे गुजरेगी। जो लोग बेघर हुए हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है या कहीं उनसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, और उनको टेम्प्रेरी अकोमोडेशन कि उनकी आने वाली एक या दो रातें कैसे गुजरेंगी उनकी व्यवस्था की जा रही है। माना जा रहा है कि, और क्योंकि हमारी कुछ स्थानीय लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि इस बिल्डिंग में मोरक्को के बहुत सारे लोग रहते थे, अरब देशों के बहुत सारे लोग रहते थे, और उनमें से एक ने कहा कि क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो कई लोग सोए नहीं थे, इसी वजह से जो मरने वालों की तादाद है शायद उतनी ना हो जितनी आशंका जताई जा रही है कि अगर रमज़ान नहीं होता और लोग सो रहे होते तो संख्या बढ़ सकती थी। लेकिन जो लोग अफेक्टेड हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आने वाले दिनों में उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। जो इमीडिएट कंसर्न है अभी स्थानीय प्रशासन में वो ये है कि जो लोग बेघर हुए हैं उनको रिहैबिलिटेट किया गया। हालांकि इंक्वायरी, जो जांच है, वो प्रोसेस ऑन हो गया है, वो शुरू हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। जिस तरह से आग तेज़ी से फैली, कहा जा रहा है 5 मिनट में नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग जो है वो धू धू करके जलने लगी, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं।
ये थे विनीत खरे जो लंदन से इस वक्त टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारे संपर्क में है। विनीत, इस वक्त वहाँ मेरा अंदाज़ा है कि 3:15 लगभग बज रहे होंगे। आप हमें ये अंदाज़ा दीजिए कि लंदन में जब हम लोग थे वहाँ पे हर इमारत में फायर फाइटिंग के इतने ज़बरदस्त इंतज़ाम हुआ करते थे और बीच बीच में ड्रिल्स होती थी, इसको बहुत हल्के तौर पर नहीं लिया जाता है लंदन में, फिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, किसकी ज़िम्मेदारी बनती है, फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था?
राजेश, अभी मैं बता दूं सबसे पहले कि मैं उसी बिल्डिंग के सामने हूं जहां पे आग लगी है और अभी भी धुआं उठ रहा है। जहां तक आपने आग के इंतजाम की बात की, मैं यहां पे कई स्थानीय लोगों से बात की जो यहां पे रहते हैं और वो बड़े शॉक में हैं। यहां पर लंदन में आग की जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको बड़ा सीरियसली लिया जाता है, और जो ड्रिल्स होते हैं हर 3 से 6 महीने में होते हैं, ऑफिस होते हैं उनको खाली करवा लिया जाता है। हम दिल्ली के BBC में पता है अलार्म बजने लगता है और ड्रिल्स होते हैं, वहां पर भी लोग नीचे आ जाते हैं, तुरंत अलार्म बजता है। यहाँ BBC के लंदन ऑफिस में भी हमने ये देखा है। तो और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आग बुझाने वाले जो उपकरण होते हैं, उनकी लगातार जांच की जाती है।
हाँ, वही मैं उसी के लिए मैं बहुत ही एकदम थोड़ा चकित हो गया कि कैसे एक 27 मंजिला इमारत में आग लग गई। हालांकि लंदन में अगर आप इतिहास देखें तो बहुत पूरा लंदन शहर खाक हो गया था एक जमाने में 1666 में।
बिल्कुल, और आज सुबह से जो मैं आई विटनेसेस सुन रहा हूँ उनके अकाउंट, जैसे खासकर एक माइकी, मुझे नाम याद आ रहा है, उनकी पत्नी, उनकी गर्लफ्रेंड थी और उनकी एक बच्ची भी थी, और उन्होंने बताया कि वो सिगरेट पीने के लिए उठे थे और तब जाके उन्हें पता चला कि बिल्डिंग में आग लग गई है। तो उन्होंने अलार्म भी नहीं बजा, कुछ नहीं बजा, लोग जो है क्योंकि रमजान की वजह से कई लोग जगे हुए थे।
आपने बताया कि मोरक्को के रहने वाले ज्यादातर लोग वहां थे,
इसलिए बच्चों ये जो सवाल हैं इस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब सवाल हैं, लोगों के दिमाग में हैं, लेकिन अधिकारियों का जो अभी इमीडिएट ध्यान है वो है कि जो लोग हैं उन पर ये जो, लेकिन ये सवाल बहुत ही जायज सवाल हैं कि क्यों कोई अलार्म नहीं बजा, कैसे एक बिल्डिंग जो है बिल्कुल खाक हो गई और आग इतनी तेजी से बढ़ी कि लोगों को शायद निकलने का मौका
भी नहीं मिला। जी बिल्कुल, आप अपना ख्याल रखिए विनीत खरे। मैं अब कार्यक्रम में हिंदुस्तान की तरफ मुड़ता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके में आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस गोलीबारी से 6 लोगों की मौत के बाद मौत के एक हफ्ते बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंचे। गुना से कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 72 घंटे के लिए अनशन पर बैठ गए हैं। वहां से शुरह नियाजी ने ये रिपोर्ट भेजी है।
6 जून को हुई फायरिंग के बाद मंदसौर में पीड़ित किसानों के परिवार वालों से मिलने के लिए हर सियासी दल के नेता ने कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मिलने नहीं दिया। वहीं उनके आने से पहले धारा 144 भी हटा ली गई। किसानों के विरोध से बचने के लिए जिला प्रशासन ने शहर में 7 अस्थायी हेलीपैड बनाए। दूसरे सियासी दलों के नेताओं को न जाने देने और मुख्यमंत्री के लिए तमाम इंतजाम करने को प्रदेश के गृह मंत्री गलत नहीं मानते हैं। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा,
मुख्यमंत्री जी अगर मंदसौर जाते हैं तो मुख्यमंत्री के नाते वहां पर जाकर वहां की स्थिति की समीक्षा करना, वहां के लोगों से मिलना, ये मुख्यमंत्री जी चूंकि राज्य के मुखिया है, मुख्यमंत्री के नाते वो अगर जाते हैं तो इसमें कहीं कोई आपत्ति। देखिए, प्रशासन ये तय करता है कि स्थिति सामान्य करने में किससे सहयोग हो सकता है, किसके जाने से स्थिति बिगड़ सकती है, उस आधार पर निर्णय प्रशासन का।
वहीं मारे गए किसान परिवार के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री के सामने परिवार के लोगों ने इंसाफ की मांग की। 5 किसानों की मौत फायरिंग से हुई थी, वहीं 1 किसान की मौत कथित तौर पर पुलिस थाने में पुलिस की पिटाई से हुई। मुख्यमंत्री सबसे पहले घनश्याम धाकड़ के घर गए। उनके भाई ने बताया,
घनश्याम जी के साथ यहाँ वो धरने के नाम पे गए थे कि धरने धरने के चक्कर में, अब ठीक है देखने के हिसाब से जाओ या फिर साथी के साथ जाओ, कैसे भी गए थे। वहाँ से उन्होंने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद थाने ले गए, वहाँ पे पिटाई करी, पिटाई इतनी ज्यादा करी कि मर गया आदमी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी परिवारों से कहा कि सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या को हल करने की कोशिश करेगी। वहीं भोपाल में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना 72 घंटे का सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज देवास में किसानों से मिले और उनकी समस्या सुनी। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और यही वजह है कि हर पार्टी किसानों के बीच पहुँच रही है और अपनी पार्टी को किसानों के सबसे करीब बता रही है। शुरह नियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। आज बुधवार है और हमें मालूम है कि आज के दिन आपको इंतजार रहता है दुनिया जहान का। आज हम चर्चा करेंगे चीन और ताइवान संबंधों की। पनामा ने हाल ही में ताइवान से संबंध तोड़कर चीन से कूटनयिक संबंध बना लिए हैं। इसका क्या महत्व है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, आज की इस कड़ी में आपको मोहनलाल शर्मा यही बता रहे हैं।
दुनिया जहान।
Me dirijo a la nación el día de hoy para anunciarles que hemos tomado la decisión।
मैं राष्ट्र को यह बताना चाहता हूं कि आज 2017 से हम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। पनामा के संवैधानिक राष्ट्रपति के रूप में मैं स्थितियां स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि यही देश के लिए सही रास्ता है।
पनामा के टीवी चैनल पर देश के राष्ट्रपति युआन कार्लोस वरेला घोषणा करते हुए। उधर ताइवान सरकार ने पनामा सरकार के इस फैसले पर निराशा और गुस्से का इजहार किया। ताइवान के विदेश मंत्री डेविड ली ने जवाब दिया और कहा कि पनामा ने आर्थिक फायदे के लिए ताइवान के साथ अपने रिश्तों को बेच दिया।
पनामा सरकार ने दोनों देशों के लोगों की दोस्ती को दरकिनार किया है। उन्होंने इस तथ्य की भी अनदेखी की कि ताइवान ने पनामा के समग्र विकास के लिए क्या कुछ नहीं किया।
तो कहानी ये कि पनामा ने ताइवान को छोड़ा और चीन का हाथ थाम लिया। क्या मामला सिर्फ आर्थिक नफे नुकसान का है या फिर चीन ने अपनी दबाव की रणनीति का इस्तेमाल किया है? मैंने पूछा चीन के दौरे पर गए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से।
पनामा कैनाल जो है वो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा स्रोत है आमदनी का, और अमेरिका के बाद चीन दूसरा देश है जो सबसे ज्यादा पनामा कैनाल में शिपिंग का इस्तेमाल करता है और उनको शिपिंग फी देता है। तो एक तो ये हो गया पॉजिटिव इंसेंटिव पनामा के लिए कि उससे चीन के जो आर्थिक रिश्ते हैं वो बहुत ही सुदृढ़ हैं। और उसके साथ साथ आपने कहा कि क्या प्रेशराइज भी कर रहा है चीन, तो पिछले कुछ वर्षों पहले चीन ने एक सेंट्रल अमेरिकन वाटरवेज प्रोजेक्ट शुरू करा जो पनामा कैनाल को चैलेंज दे सकता है और उसकी एक तरह से अल्टरनेटिव तैयार कर सकता है। तो दोनों तरह से पॉजिटिव इंसेंटिवाइजेशन एंड नेगेटिव प्रेशर जो क्रिएट करता है चीन।
दरअसल ये बेहद पेचीदा मामला है चीन और ताइवान का। दोनों ही देश खुद को असली चीन कहते हैं। चीन ने ताइवान को हमेशा से एक ऐसे प्रांत के रूप में देखा जो कि उससे अलग तो हो गया है, लेकिन उसकी सोच है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है। दोनों देशों के बीच तनाव की जड़ें इन देशों के अतीत में हैं। दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज में एडजंक्ट फेलो अतुल भारद्वाज।
इसका इतिहास जाता है चीन की सिविल वॉर जो 1930 के दशक से शुरू हुई। ये चाइनीज की नेशनलिस्ट फोर्सेस कुमिंगतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो जंग थी उसका ये नतीजा है। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी चीन की, जिसको माओ लीड कर रहे थे, इस सिविल वॉर में जीत गई, तो जो चीन का जो मेजर हिस्सा था मेनलैंड चाइना का, वो कम्युनिस्ट फोर्सेस के हाथ में आ गया। तब जो रूलिंग राष्ट्रवादी कुमिंगतांग पार्टी थी वो ताइवान में जाके बस गई। वो तब से लेके अब तक ये दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है कि कौन एक्चुअली चीन को रिप्रेजेंट करता है। वाजिब सी बात है कि चीन की पॉपुलेशन जो है वो 1.3 बिलियन है और ताइवान बहुत एक छोटा सा देश है एरिया में भी और पॉपुलेशन के हिसाब से।
एक और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी, जिसे आमतौर पर चीन कहा जाता है, वो साल 1949 में बना था। इसमें मेनलैंड चीन और हांगकांग मकाऊ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र आते हैं। दूसरी ओर रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी है, अब उसके पास ताइवान और कुछ द्वीप समूह हैं। दशकों तक चीन और ताइवान के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। उस वक्त चीन ने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साल 2000 में चेन शुआई बियान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने खुलेआम ताइवान की आजादी का समर्थन किया। ये बात चीन को नागवार गुजरी। दुनिया भर के देश जो कि चीन या फिर ताइवान के साथ संबंध रखते हैं, वो वन चाइना पॉलिसी के आधार पर रखते हैं। तो क्या है ये नीति अतुल भारद्वाज?
वन चाइना पॉलिसी, इसके तहत चीन कहता है कि चीन में केवल एक सरकार ही है और जो देश चीन की सरकार को वाजिब नहीं मानते उनके साथ और जो ताइवान की सरकार को मान्यता देते हैं उनके साथ चीन संबंध नहीं रखता है। वन चाइना प्रिंसिपल भी है एक, वो इस वन चाइना पॉलिसी से थोड़ा भिन्न है। प्रिंसिपल के तहत चीन इंसिस्ट करता है कि ताइवान चीन का एक अभिन्न अंग है और वन चाइना पॉलिसी के अंडर वो ये कहता है कि कोई भी देश ताइवान के साथ राजकीय संबंध नहीं रख सकता है।
दोनों देशों की खींचतान में अमेरिका को ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र दोस्त माना जाता रहा है। दूसरे विश्व युद्ध से साल 1989 तक दोनों देशों के संबंध बेहद घनिष्ठ थे। फिर 1989 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने चीन से रिश्ते प्रगाढ़ करने की पहल करते हुए ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए और चीन की वन चाइना पॉलिसी को अपना लिया। ताइवान को लेकर अमेरिका व चीन के बीच सबसे ज्यादा तनाव तब देखा गया जब साल 1996 में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को अपने तरीके से प्रभावित करने के लिए चीन ने मिसाइल परीक्षण किया। जवाब में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसे कि वियतनाम युद्ध के बाद एशिया में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य प्रदर्शन कहा गया। अतुल भारद्वाज,
1979 में अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ ब्रेक किए, तोड़े। अमेरिका एक विभाजन क्रिएट करना चाहता था तो उसने चीन के साथ दोस्ती निभाई और उसके तहत ये पॉलिसी को अपनाया, वन चाइना पॉलिसी को। परंतु साथ के साथ ताइवान के साथ उसने रिश्ते रखे, डिफेंस के रिश्ते, कि अगर चीन ताइवान को अपने साथ मिलाने के लिए कोई युद्ध छेड़ता है, फौजें तैनात करता है, तो अमेरिका उस हालात में ताइवान को सिक्योरिटी की गारंटी देता है। ट्रंप इलेक्शन के दौर में थे, उस वक्त ट्रंप ने कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेंगे। पहली बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तब ताइवान की प्रेसिडेंट ने उनको एक कॉल करी जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल कॉल बन गई। तो ये एक डिप्लोमेटिक कू माना जा रहा था उस टाइम पर। फिर ट्रंप ने कॉल करी शी जिनपिंग को, तब ये क्लैरिफाई किया कि वो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं।
अफ्रीका और कैरिबियाई क्षेत्र के कई छोटे देश अतीत में वित्तीय सहयोग के चलते चीन और ताइवान दोनों से बारी बारी से रिश्ते बना चुके हैं और तोड़ भी चुके हैं। ताइवान ओलंपिक खेल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समारोह में चीन का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसी के चलते वो लंबे समय से ऐसे मंचों पर चाइनीज ताइपे के नाम के साथ शिरकत करता है। पनामा ने तो ताइवान का साथ छोड़ दिया, और अगर इसी तरह दुनिया के बाकी देश भी एक एक करके ताइवान का साथ छोड़कर चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करते रहे तो फिर ताइवान का भविष्य क्या है? प्रोफेसर स्वर्ण सिंह,
22 देश ऐसे हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस कुछ ही महीनों में वो सब देश बदल जाएंगे और ताइवान अकेला रह जाएगा। हालांकि ये नहीं लगता कि देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को छोड़ के रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान की तरफ झुकेंगे, ऐसा रुझान लगता नहीं इस वक्त। आज देखें, चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक व्यवस्था है, उसकी आर्थिक वृद्धि है, तो उस नजरिए से ताइवान की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक वृद्धि जो है वो खूब अच्छी है और प्रभावशाली है। ताइवान की इन्वेस्टमेंट बहुत से देशों में है, 70 देशों की कमर्शियल रिलेशंस हैं ताइवान के साथ, तो आर्थिक नजरिए से उनका जो जुड़ाव है पूरे विश्व के साथ वो बहुत जबरदस्त बना हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि उलझा हुआ मामला है जिसमें मेनलैंड चाइना का, बीजिंग का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर बहुत जल्द ही ताइवान खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, जब उसका मर्जर हो जाएगा मेनलैंड चाइना में, ऐसा नहीं कह सकते।
मोहनलाल शर्मा, बीबीसी।
दुनिया जहान का एक अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा, हम आपकी चिट्ठियों को शामिल करेंगे। और अब आपको सीधे ले चलते हैं ब्रिटेन के कार्डिफ शहर, जहां इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल चल रहा है, और खालिद करामात हमारे बीबीसी उर्दू सर्विस के साथी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं दीवार की तरह आपके और उनके बीच में नहीं होता हूं, मैं हट रहा हूं। बताइए आप क्या देख रहे हैं खालिद साहब, बहुत शोर आ रहा है पीछे से।
हाँ जी राजेश, इस वक्त पाकिस्तान जो है जिसे कहें फायर पर है, तकरीबन 13वां ओवर चल रहा है और 77 रन बना चुके हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग फिलहाल नाकाम लग रही है। फखर जमान जिन्होंने अब तक बहुत शानदार बैटिंग की है पाकिस्तान की तरफ से, वो धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, और अजहर अली भी जो है जरा खामोश रहते हैं, उन्होंने भी जो है छक्के चौकों की बौछार कर दी है, तो इस वक्त पलड़ा पाकिस्तान का भारी लग रहा है।
और मैं आपकी बातें पहले सुन रहा था कि हिंदुस्तानी लोग ज्यादा खुश हैं इस बात पे कि पाकिस्तान जीत रहा है, इसकी क्या वजह है सर, ये बताइए।
बिल्कुल ये मुझे भी हैरत हुई जब सुबह मुलाकात हुई, मेरी काफी सारे हिंदुस्तानी फैंस है जो सब पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे, और उनके दिल में ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, क्योंकि उस मैच का और उस फाइनल का कोई और नेवल बदल नहीं हो सकता। तो इसीलिए बड़ी तादाद में इंडियन फैंस जिनके पास सेमीफाइनल के टिकट भी थे वो आए हैं और पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का होम क्राउड बन गया है।
अरे देखिए, अगर ये यही हो जाए तो फिर तो सब झगड़ा ही मिट जाए। बहरहाल मैं अब आपको रोकूंगा क्योंकि हमारे पास वक्त है बहुत कम, कुछ अगर संक्षेप में बहुत ही खुलासा करके बताना चाहें तो तुरंत बता दीजिए।
देखें, सब लोग शुरू में कह रहे थे कि सरफराज ने बड़ा डेंजरस डिसीजन लिया है इंग्लैंड को पहले बैटिंग कराने का, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरह उनके फैसले को बैकअप किया है वो बहुत ही शानदार निकला। नए बॉलर रोमान रईस जो पहला अपना वनडे खेल रहे थे, उन्होंने शानदार बॉलिंग की और बिल्कुल रन्स नहीं दिए। इसके अलावा जुनेद खान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, और हसन अली जो अब तक काफी कामयाब रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने भी आज 3 विकेट लिए, और स्कोर लाइन तो आपको पता ही है, इंग्लैंड कम्प्लीटली कोलैप्स हो गई इंग्लैंड की बैटिंग, हालांकि वो टॉप फेवरेट थे इस टूर्नामेंट में।
और चलते चलते स्कोर बता दीजिए।
इस वक्त 13 ओवर हो चुके हैं और पाकिस्तान के 78 रन है, 36 फखर जमान ने बनाए हैं और 34 अजहर अली ने।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी शुक्रगुजार हैं आपके खालिद करामत साहब, आप मैच का आनंद लीजिए। हमारे पास इतना समय तो नहीं बचा है कि अब अपने श्रोताओं को हम समाचार सुनवाएं, लेकिन फेसबुक में हमारे साथ जो जुड़े हैं, इंदर गोलूवाला साहब, मसूद नदवी साहब, वीरेश गुप्ता, इन सब ने कॉमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इजाज़त दीजिए और अब कल सुबह 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम नमस्कार भारत में। इस कार्यक्रम को संचालित किया हमारे दोस्त देवाशीष कुमार ने।